Krishna!
Hare Krishna!
Hare Krishna!
Hare Krishna!
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 Krishna! Krishna! Krishna!
Hare Hare!
Hare Hare!
Hare Hare!
Hare Rama!
Hare Rama!
Hare Rama!
Hare Rama!
भाग्यशाली है कि हमारे बीच में हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु उपस्थित हैं और इतने तेज प्रभाव भक्त हैं कि हम जो धीरे धीरे भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर कुछ ताकत जला जाए है कि हम लोगों को सारे साथ भक्ति करनी चाहिए, ना कि धीरे धीरे आए चलो चार बज गए जाना पड़ेगा मंदिर में, ये तो बड़ा कठिन काम है। तो वो हमारे अंदर एक एनर्जी बन जाए हैं। मैं प्रभु जी का इंट्रोडक्शन देता हूँ क्योंकि अपने आप में ऐसा इंट्रोडक्शन है कि आपको लगेगा कि ये हम लोग इतने भाग्यशाली कैसे हो गए कि यहाँ पर आ गए। आप एक इंट्रोडक्शन सुनिए। प्रभु जी की जो भौतिक शिक्षा है, मेडिकल एजुकेशन है, बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल फ्रॉम लंदन कॉलेज। जो शिक्षा होती है लंदन में जाकर प्रभु जी ने पढ़ाई की और इसके बाद एमबीए किया पुणे के अंदर सिम्पोसिस एक इंस्टीट्यूट है जो भारत के इंस्टीट्यूट में काफी प्रसिद्ध है एमबीए। इसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर नौकरी की 8 साल अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, एक मल्टीनेशनल यानी एमएनसी में घुसना कितना मुश्किल काम होता है। एक रोज ने अपनी योग्यता के बल पर 1, 2, 5, 8 में जॉब की। उसके बाद 2006 में इस कॉम से जुड़े। उसके बाद 2010 के अंदर फुल टाइम डिवोटी बन गए, पूरा परिवार पूरा जीवन इस कॉम को समर्पित कर दिया 2010 में। और इसके अलावा इस समय जो प्रभु जी की जो सेवा है वाइस प्रेसिडेंट है इसकॉन फूड रिलीफ
फाउंडेशन।
तो आप हम में से कुछ भक्त आ जाए हैं क्या जो इसकॉन फूड में जाते हैं सेवा करते हैं? एक तो प्रभु जी है, सुमंगल प्रभु जी है, अच्छा वो प्रसाद लेने गए हैं, और एक विक्रम प्रभु, कुछ भक्त हमारे हैं जो गुड़गांव सेवा करते हैं। तो उसके वाइस प्रेसिडेंट है प्रभु जी, इस समय जो चल रहा है ये इसकॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन। इसमें लगभग सरकारी स्कूलों के 4.5 लाख बच्चों को डेली गर्मा गर्म भोजन दिया जाता है फ्री डिस्काउंट की ओर से। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 4.5 लाख बच्चे रोज गर्मा गर्म प्रसाद कृष्ण प्रसाद चाहे मुसलमान हैं चाहे हिंदू हैं उनको सप्लाई किया जाता है। उसके वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पर। और इसके अलावा इस द्वारका टेम्पल जो बना है इसके डायरेक्टर स्ट्रेटजी इन द्वारका टेम्पल फॉर फंड रेजिंग मतलब जो द्वारका मंदिर बनेगा उसकी मेंटेनेंस या जो भी सेवा है उसके लिए धन इकट्ठा करते हैं। तो जी जा जा करके ये धन दीजिए। तो बता दें मुझे कि एक कौन सा लिबर्टी के उसमें कंपनी में गए तो वहां के उस डायरेक्टर को इतना प्रेरित कर लिया अपनी बातों से कि उन्होंने कितने 300 भक्तों के लिए शूज भेजे
फ्री ऑफ कॉस्ट
दान दे दिया, डोनेशन दे दिया कि हमारी तरफ से आपके 300 भक्तों को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इतनी बड़ी सेवा की। और इसके अलावा प्रोजी जो प्रचार करते हैं भगवत गीता श्रीमद् भागवतम और एक डीवाईएस से आप नहीं समझोगे इसका क्या फॉर्म है प्रोजी
डिस्कवर योरसेल्फ
जो समय सेमिनार चल रहा है द्वारका मंदिर में। तो आज सुबह भी प्रोजी की सेमिनार थी आश्रय लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इन दिल्ली एनसीआर सिंस 6 ईयर यानी 6 साल से ये प्रोजी की इस समय सेवा चल रही है। तो हमें से कुछ भक्त जानते भी हैं शायद आपसे नजरगढ़ जिन्होंने सुना होगा प्रोजी को। तो बहुत तेज तर्रार भक्त हैं और हमारा बहुत ही सौभाग्य है। लेकिन हम लोगों को चाहिए पूरे उत्साह के साथ इस इनके लेक्चर को सुने और फिर जो भी आपकी क्वेरी है जो भी आपका प्रश्न है उसको होल्ड करें और आखिर में सबको मौका मिलेगा, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आप प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलिए इनके स्वागत के लिए हरि बोल।
हरे कृष्ण। कीर्तन करेंगे थोड़ा सा, दो मिनट कीर्तन करेंगे। खुश हैं या परेशान हैं? अरे वाह, जय राधा माधव कुंजा बिहारी, जय
इतवार के कार्यक्रम की निताई निताई गौर प्रेम आनंदे। हरे कृष्णा। तो आज जो है हमारी भगवत गीता, आप में से कितने लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं? सबके घर में है यही वाली गीता है? हरि बोल। तो ये जो भगवत गीता है इसका आज 9वें अध्याय का 14वां श्लोक, 14वां श्लोक हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर श्लोक और बहुत सुंदर अध्याय बताया गया है भगवत गीता के अंदर। 18 अध्याय है और उसमें से ये 9वां अध्याय जो है बिल्कुल 50% नॉलेज जो है देने में। तो भगवान ने सोचा कि आजकल लोग 50% ही जीवन में चाहते हैं, इंस्टेंट सब कुछ जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो सारा ज्ञान 18 अध्याय पढ़ने तक अगर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ पाया तो उसको 9वें अध्याय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि भगवान कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, ईश्वरम सर्व कृष्णा, जो है ईश्वर सारे के सारे। भगवानों में सबसे परम ईश्वर कौन है? कृष्णा। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। वैसे तो सारे गीता के श्लोक बहुत सुंदर हैं, तो हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग घर आइए। सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्चय द्रव्यधाम नमस्तञ्चय मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्चय द्रव्यधाम नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च द्रव्यधाम नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। बोलना चाहेंगे कोई? माता लोग सतत कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च द्रव्यधाम नमस्तञ्चय मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्चय द्रव्यधाम नमस्तञ्चय मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। और कोई? तो हम सतत कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च द्रव्यधाम नमस्तञ्चय मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते।
कितने घंटे? कितने आवर्स?
टाइम सिक्स तक लेंगे और 6 to 20 मिनट्स क्वेश्चन आएंगे। अभी कितना होगा?
तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की। तो बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। समान पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहां पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्द में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वे भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर की महिमा करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवद्गीता में महात्मा नहीं कहा गया, उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यह भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु तथा स्मरण है। ऐसा महात्मा अनंत भगवान के पांच दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकल्प भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावना अमृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। यथे प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों को दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इस अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, ये भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। तो बहुत सुंदर इसके अंदर वर्णन हुआ है कि महात्मा कौन है। तो अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे। आप लोग मेरे साथ दोहरा सकते हैं।
ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकायं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपं कदा मह्यं दधाति सत्यतान्त्रिकम्। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहजातं सगणनाथान्वितं कंस जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलिता श्री विशाखानिहांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे राधनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरूपश्च कृपासिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभु श्रीयद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे।
चर्चा करेंगे कि महात्मा कौन है। इससे पहले वाले श्लोक में नवे अध्याय के 13वें श्लोक के अंदर बताया गया है कि महात्मा कौन व्यक्ति है। महात्मनस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति आश्रितम्। वो व्यक्ति महात्मा है जो व्यक्ति देवी प्रकृति, भगवान की तीन प्रकृति है, तटस्था शक्ति, अंतरंगा शक्ति और बाहरंगा शक्ति। जो व्यक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी के सेवा में लगा हो वही व्यक्ति महात्मा बनने योग्य है, अन्यथा कोई नहीं। विभिन्न प्रकार के लोग अपने आप को महात्मा का टाइटल दे देते हैं, रातों रात में व्यक्ति जो है वो क्या बन जाते हैं, स्वामी जी बन जाते हैं, गुरु जी बन जाते हैं। भगवान कृष्ण क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के भगवान है तो वो चूज करते हैं, चुनते हैं कि किस व्यक्ति को ज्ञान देना है, किसको ज्ञान नहीं देना। आप लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि आप लोगों को भगवान ने चुना इसलिए ताकि आप परंपरागत ज्ञान को प्राप्त कर सके। अन्यथा क्या होता है कि ऐसे असंख्य गुरु देखे गए हैं जो रात को सोते हैं, क्या करें साहब, नौकरी सही नहीं चल रही है, पढ़ाई वढ़ाई ठीक हो नहीं पाई, तो ऐसा कोई काम ढूंढते हैं जिसमें कुछ धन कमाया जा सके, लोग भी हो हमारे जय जयकार करने वाले। तो लोग क्या करते हैं, रातों रात आप उनसे पूछें कि आपके गुरुजी का नाम क्या है, तो बोलेंगे कि गुरुजी कौन होते हैं, मैं तो खुद ही गुरुजी हूं, रात ही को पैदा हुआ और मैं खुद ही गुरुजी हूं। तो हमको पता रहना चाहिए कि गुरुजी के गुरुजी, गुरुजी के गुरुजी, गुरुजी के गुरुजी, और इस तरह से गुरुजी की अगर असंख्य लाइन बनाई जाए तो 32, 33, 35, 40 कहीं ना कहीं जाकर वो कृष्ण से जुड़ा होना चाहिए। अगर वो कृष्ण से नहीं जुड़ा कहीं पे भी जाकर तो इसका मतलब वो परंपरागत ज्ञान नहीं है, इसका मतलब भगवान ने वो ज्ञान नहीं बोला। अब मैं बोल सकता हूं आने के बाद में कि देखो ऐसा है माता जी प्रभु जी अलग अलग ना बैठे, मुझको अच्छा लगता है कि पति पत्नी साथ साथ बैठे, है ना। तो ये ज्ञान शास्त्रों का नहीं है, ये मेरा ज्ञान है, और अगर मैं अपना ज्ञान दूं लोगों को तो फिर क्या है वो गलत है, क्योंकि मैं अपने अनुसार लोगों को चला रहा हूं। देखो जी हमने ना 40 साल तपस्या कर ली तो अब हम बन गए भगवान जी, ठीक है, अब आप क्या करो, भगवान तक जाओगे फिर भजेंगे, देखा कभी भगवान आया क्या, भगवान तो मैं ही हूं, साक्षात भगवान मैं ही हूं, अपना सब कुछ मुझको अर्पण करो, क्या लागे तेरा, कर दे मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा, तेरा क्या लगे, कर दे अर्पण तुरंत। अभी एक बार क्या हुआ, ऐसे ही गुरुजी थे और गुरुजी सिखा रहे थे अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, तो इतने दिन तो क्या हुआ, सब लोग बोले गुरुजी 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 क्या हुआ गुरुजी अहम ब्रह्मास्मि गुरुजी क्या हुआ, तो बोले देखो सुबह मैंने आज भोजन ज्यादा खा लिया और ज्यादा भोजन खाने से कुपच कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई जिससे मेरी सांस रुक रही है, मुझे सांस नहीं ले जा रही, मुझे हॉस्पिटल ले चलो ऑक्सीजन दिलवाओ। जब इस प्रकार से हुआ तो आप सोचिए गुरु कौन है, जो गोस्वामी है जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया है, दिन में सिर्फ छाछ या थोड़ा सा फल खाकर अपना जीवन गुजारता है, वो व्यक्ति महात्मा है या वो व्यक्ति महात्मा है जो कि बोल रहे अहम ब्रह्मास्मि, तीन बार खाना खा रहा है दिन में चार बार और फिर उसके बाद अरे अगर तुम ब्रह्म हो, अगर तुम भगवान हो, तुम्हें खांसी क्यों आती है। फिर एक दिन एक बोले प्रभु जी आप पता नहीं कैसे बोलते हो, हमारे हमारे जो गुरु जी हैं वो तो बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, सिर पे हाथ लगाते हैं तो करंट लगता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अच्छा एक इतना उसने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने साल लगाए, तो उन्होंने कहा 40 साल, 40 साल में उन्होंने इतनी शक्ति है, सिर पे हाथ लगा छे करंट लगता है जोर से। तो प्रभुपाद बोले कि एक काम करो अपने भक्त से एक तार का टुकड़ा ले आओ, तार का टुकड़ा लाया, बोले लगाओ इसको स्विच बोर्ड में, लगाया दो तार खोल लिए, इधर आओ लगाया करंट। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, कह रहे लगा 10 रुपए का, 10 रुपए का कितने रुपए का तार है, तार से करंट जो लग रहा है उसको प्राप्त करने के लिए 40 साल जीवन के व्यर्थ कर दिए, है कोई फायदा। हमारे गुरु जी भगवान जी हैं, अच्छा भगवान जी हैं, कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में गोवर्धन को अपने कन्नी उंगली पर उठाया। आप अपने गुरु जी से बोलिए कि गोवर्धन नहीं उठा सकते, कलयुग के भगवान है तो कम से कम 50 किलो का पत्थर सर पे रख के 7 दिन खड़े रहे, खड़े रहेंगे क्या, पता करने के लिए 500 रुपए का नोट नकली है या असली ये पता करने के लिए कुछ गाइडलाइन होती है। मार्केट में 500 रुपए का नोट घूम रहा है धड़ल्ले से, पता नहीं नकली आ गया कि असली आ गया, तो पता करने के लिए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है उन्होंने एक गाइडलाइन निकाली है, इनके अनुसार आप पता कर सकते हैं 500 का असली है या नकली। क्या है गाइडलाइन, ऐसे घुमा के देखो हरा तार नीला तार नजर आ रहा है तो असली है, नहीं तो असली है नहीं तो नकली। ऐसे गुरु के बारे में है जो मन पे कंट्रोल किया है, वचन पे कंट्रोल किया है, इंद्रियों पे कंट्रोल किया है, और जो कृष्ण का ज्ञान दे रहा है, खुद को भगवान नहीं बता रहा। ऐसा उठे एक काम करो प्रशांत मुकुंद नाम हटाओ, लिखो महात्मा प्रशांत मुकुंद, प्रभु जी इतने साल हो गए प्रवचन करते हो महात्मा, ऐसे नहीं, शरणागत होकर भजन करता है। और एक गुरु जी तो शरीर ही छोड़ दिया अपना प्रचार करते करते,
तो शरीर छोड़ दे, समाधि दे दो। तो बोले नहीं नहीं गुरु जी बोल के गए थे 30 साल की समाधि लेंगे, डॉक्टर बोल रहे हैं मृत हो गए, इनको दफना दो या जला दो। नहीं नहीं गुरु जी बोल के गए 30 साल की मृत समाधि है। अरे कौन सी समाधि? एक नदी को पार करने के लिए कितने रुपए लेते हो? बोला 20 रुपए। 20 रुपए की चीज के लिए इसने 40 साल खराब कर दिए। महात्मा जी, लेकिन गुरु वो है जो खुद को गुरु ना कहे, वो गुरु है जो खुद को भगवान ना कहे। वो क्या कहे? मैं कौन हूं? कृष्णेर दास, मैं कृष्ण का नौकर हूं। वो व्यक्ति हमारे मंदिर से कि मैं गुरु जी हूं, मैं भगवान हूं, नहीं बोलेगा। क्योंकि बताते हैं कृष्ण एक सर्वज्ञ, कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीर सर्व विश्राम। जो कृष्ण का शरीर है यही विश्राम है। बोलते ना गृहस्थ आश्रम, आश्रम का मतलब आराम मिले, जहां ज्यादा भाग दौड़ ना हो, 8 घंटे की नौकरी करे फिर कीर्तन करे पूरा परिवार, ऐसे परिवार को आश्रम बोलते हैं। सन्यासी, सन्यासी आश्रम में तो है पर दौड़ रहा है पैसों के पीछे, तो वो सन्यासी नहीं है, ब्रह्मचारी है। उतना ही नमक चाहिए जीवन में, तो धन भी उतना ही चाहिए जितना आवश्यकता है। कम डालेंगे तो मजा नहीं आएगा, ज्यादा डालेंगे तो जहरीला हो जाएगा। लेकिन लोग अभी ज्यादा धन डालने के चक्कर में जहरीले हो गए। सांप भी उतना जहरीला नहीं जितना मनुष्य हो गया। क्यों? सिर्फ एकमात्र कारण, जो महात्मा नित्य कीर्तन करता है वही व्यक्ति जो है असली महात्मा है। सतत कीर्तयन्तु माम, सदा कीर्तन करे, है ना। कौन सा कीर्तन करे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा हरे
हरे, राम हरे राम राम राम
हरे।
एक बार क्या हुआ, कुछ ऐसे भक्त थे, जैसे हमारे जैसे गरीब भक्त बेचारे हर जगह पहुंच जाते हैं प्रचार करने के लिए, जहां मौका मिले वहां चालू हो जाते हैं। तो ऐसे एक भक्त एक घर में पहुंच गए, और उनके घर में वो भक्त नहीं था। ऐसे बहुत परिवार होंगे, आपके भी होंगे, जहां पर कोई भक्त एक है और एक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हम आपके घर हरे कृष्णा कीर्तन करना चाहते हैं, जैसे हमारे प्रभु जी आजकल घरों में सबके जप करवा रहे हैं। तो कुछ लोग मना कर दे, प्रभु जी हमारे घर में क्यों, हमारे घर में कुछ भक्त हैं कुछ नहीं, ऐसा होता है। तो उनसे भी बोला गया कि हमारे घर कुछ भक्त हैं और कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो नहीं है उन्हें कमरे में बंद कर दो, और बाकी जो है उनको बाहर बुला लो, उनको अंदर खाने पीने की वस्तु दे दो, हम बाहर कीर्तन करेंगे। तो भक्तों ने अंदर ताला डाल दिया, एसी ऑन कर दिया, बोले आप टीवी देखो हम बाहर कीर्तन करेंगे, और खूब जोर जोर से कीर्तन होने लगा। चतुर, तो वो बोले एक बार मिलवा तो दो अपने भाई से। अंदर घुस जाते हैं, ताला खोला अंदर घुस गए, हरि वो हरि वो हरि वो, सारे अंदर घुस गए। जब अंदर घुसे तो जाकर उस व्यक्ति से बोले, हाँ भाई आप क्यों नहीं आए कीर्तन में? अच्छा नहीं लगता। वही अच्छा नहीं लगता जो तुम लोग बोलते हो। कह रहे हम लोग क्या बोलते हैं? वही जो तुम लोग मुझे बोलने के लिए कह रहे हो, हरे कृष्णा ना बोले। तो ऐसे सारे भक्तों ने ट्राई किया, प्रभु जी क्या नहीं बोलना चाहते? वही जो तुम लोग बार बार कहते हो, हाथ खड़ा करके बोलो बोलो बोलो, वही नहीं बोलना चाहते। ये नहीं बोला कि हरे कृष्णा नहीं बोलते। बहुत बार ऐसे होता रहा, बहस चलती रही। अंत काल में आकर जो उनके लीडर प्रीचर थे, जैसे हमारे प्रभु जी लीडर है हमारे सबके, तो प्रभु जी जैसे कोई घुसे, बोले अच्छा अच्छा लड़ाई झगड़ा बंद करो, क्या बात है? कह रहे आपके लोगों ने मुझे पकड़ लिया ऐसे हाथों से, और कह रहे हैं वो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं नहीं बोलना चाहता हरे कृष्णा, मुझे बोल रहे बोलने के लिए। तो जो लीडर थे वो बोले, बोल तो दिया, चलो हमारा काम हो गया, चलो चलो चलो। तो सारे बाहर आए, और उसके अभी सुनिए आनंद कथा का। तो उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकले, तो बाहर निकलते क्या हुआ, दूसरे दिन ये जो संसार है ना, ये बड़ा कष्टकारी है। कल का दिन होगा नहीं होगा हमको मालूम नहीं है, मालूम गारंटी है? कोई साइन करके दे सकता है? प्रभु जी 60 साल जीऊंगा, चलेगा कल तक जीवन चलेगा, कोई गारंटी साइन है? कोई यहाँ पर गारंटी नहीं थी। और उन्होंने एक दिन पहले हरे कृष्णा बोला और कोई अपराध नहीं किया जीवन में, और फिर क्या हुआ, दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक हो गया, हृदय का रोग। और जब हृदय रोग हुआ तो उनके शरीर से आत्मा को निकाल के यमदूत ले गए, ले जाकर उनसे पूछा गया यमराज से कि यमराज इसने अपने जीवन में सारे गंदे काम किए, जो चार चीजें मना की जाती हैं, खूब इसने नशा किया, खूब इसने मांसाहार का सेवन किया, इसने खूब वैष्णवों का अपराध किया, सब कुछ किया इसने जो कर सकता था, पर स्त्री संग किया, जुआ खेला, लेकिन इसने मरने से पहले एक बार वो शब्द है ना जो दूसरे धाम में चलता है, क्या बोलते हैं? दूसरा यमदूत बोला हरे कृष्ण, हाँ हरे वाला, वो बोल दिया इसने अंतिम समय में। और उसके बाद क्या हुआ, हमने लाके इसको कड़ाई में डाला, तो जिस कड़ाई में इसको जलाने के लिए डाला, वो कड़ाई का तेल ठंडा हो गया, कुंभी पाकम का तेल ठंडा हो गया। वो सारे टेंशन में आ गए, यमदूत क्या करें, हमारा तो एक क्लाइंट खराब हो गया, ठंडा हो गया तेल, हमारी तो खाली हो जाएगी ऐसे हरे कृष्णा बोलने से, सारे हरे कृष्णा बोलेंगे और हम चले जाएंगे। तो समझ में नहीं आता, तो यमराज बोले इसका तो मुझे भी नहीं पता, मुझे इतना तो पता है जिसने पूरा जीवन 16 माला जप किया हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो और छावला के प्रोग्राम में आता हो, और अगर वो गलती से शरीर छोड़ दे तो वो धाम को जाएगा, ये तो पक्का है। लेकिन अगर उसने पूरा जीवन गंदे काम किए हो और अंतिम समय में एक बार हरे कृष्णा बोला हो तो क्या गंतव्य है मुझे मालूम नहीं। आज बोले कि हाँ ये तो अब कुछ करना पड़ेगा, चलो चलो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो जीवात्मा को लिया, यमदूत जो लेके आया था उसको लिया और खुद स्वयं यमराज भी चल दिए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। गंदे काम किए हो, सिर्फ एक बार हरे कृष्णा बोला हो, उसका क्या गंतव्य है? तो ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो कोई केस पहले मेरे पास भी नहीं आया, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, मेरे इतिहास में पहली बार ऐसा केस आया। कह रहे अच्छा चलो फिर शिव जी से पूछते हैं, सृष्टि के नाश तो वही करते हैं ना, संहार करता, तो उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या होना चाहिए। तो शिव जी से पूछने गए तो शिव जी ने भी वही बोल दिया मुझे मालूम नहीं। अभी तो जीवात्मा फ्रस्ट्रेट हो गया, वो यहां पे भी फ्रस्ट्रेट था, वहां पे भी फ्रस्ट्रेट हो गया, और यहां से यहां घुमा रहे हो, सरकारी दफ्तर बना दिया, यहां से फाइल वहां से फाइल, अरे फाइनल डिसाइड करो, नरक जाना नरक भेजो, धाम जाना धाम भेजो। तो बोले कि क्या मतलब? बोले आप लोग तो क्या है, हवा के वेग से उड़ते हो, हवा में उड़ते हैं ना यमदूत यमराज, और मैं हूं जीवात्मा, मुझे पीछे पीछे पैदल पैदल चलना पड़ रहा है और मैं थक गया हूं, मुझे या तो किसी सवारी में बिठा दो। तो बोले हमारे यहाँ गाड़ियां तो होती नहीं है, हम तो या तो खुद उड़ते हैं या तो फिर पालकी होती है, कर ठीक है पालकी में बिठा दो। तो ध्यान किया और पालकी आ गई, तो आगे ब्रह्मा जी पीछे शिव जी, एक यमदूत और यमराज जो जीवात्मा को बिठा दिया। बोले चलो कहाँ जा रहे हैं? और भगवान विष्णु के पास, क्योंकि देखो पालन करता तो वही है, सारी की सारी सृष्टि विष्णु के गर्भ से उत्पन्न होती है। विष्णु जी के पास पहुंचे वैकुंठ धाम में कि भगवान विष्णु एक केस फंस गया है, चारों के चारों लीडर सॉल्व नहीं कर पाए, अब आप ही कुछ करिए कैसे सॉल्व करें। तो विष्णु भगवान बोले क्या केस है? बोले ये कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन गंदे कार्य किए हो और अंतिम समय में मरने से एक दिन पहले वो भी जबरदस्ती में अगर हरे कृष्णा बोल दिया हो तो उसका क्या गंतव्य है? तो विष्णु भगवान जोर से हंसने लगे मालूम ही नहीं तुमको, अरे बेवकूफ हो, जिस व्यक्ति ने हरे कृष्णा बोल दिया एक बार और उसके बाद दोबारा अपराध नहीं किया, उसका गंतव्य यह है कि ब्रह्मा जी शिव जी और यमराज और यमदूत खुद उठाकर पालकी में बिठाकर उसको वैकुंठ धाम छोड़ने आते हैं और तुम यहां आ गए हो। यह सत्वाना निर्वन करते तब धामम परम ममा, यहां आने के बाद वापस तो जाता नहीं है। यह सत्वाना निर्वन करते तब धामम परम ममा, तो आगे जीवात्मा, तो एक बार जिसने हरे कृष्णा बोला उसका धाम पहुंचना डिसाइडेड है। आप लोग तो रोज बोलते हो क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत सुंदर एक ब्रज के संत कहते हैं, कीर्तन का मतलब है कि कीर्तन करने के लिए सदा तत्पर रहे। प्रभु जी बोले 6 बजे आपके घर में प्रोग्राम होगा, प्रभु हम आएंगे जप करेंगे, सब लोग सहयोग में सामूहिक जप, उसमें भाग लेना चाहिए, भाग नहीं लेना चाहिए, जैसे हमारे प्रभु जी बताते हैं भाग लेना चाहिए, भाग नहीं लेना चाहिए। वो भाग कैसे लेंगे? इंटरेस्ट के साथ। कहते हैं एक संत, कौन घंटी, राम भजन को आलसी, किस चीज का आलसी है? राम भजन को आलसी, हाँ, और भोजन को होशियार। खाना खाने का नंबर आया तो प्रसाद टाइम पे तो आ जाते हैं 250-500 भक्त, और कथा में होते हैं 80-90 भक्त। तो राम भजन के आलसी और भोजन के होशियार, कलयुग के ऐसे जीव को बार बार धिक्कार तो ऐसे जीव को बार बार धिक्कार दिया जाता है, तो हमको भी धिक्कार दिया जाएगा कि अगर हम भजन के आलसी रहेंगे, जहां मौका मिले। इतना सुंदर प्रभु जी ने प्रचार किया है, इसलिए सचिपति प्रभु ने इस पूरे एरिया में, हमें तो मतलब इनकी धोती पकड़ लेनी चाहिए, पांव पकड़ लेनी चाहिए, प्रभु जी जैसे भी करके आपका संग नहीं छोड़ेंगे, जहां आप बोलोगे वहीं चलेंगे, आप दिशा निर्धारित कर दो, बोलोगे राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, उस व्यक्ति का फिर हो गया जीवन निर्धारित, टिकट बुक हो गई फ्री ऑफ कॉस्ट वैकुंठ धाम में, और जैसे जैसे प्रगति करेंगे लेंटर भी पड़ जाएगा, घर बन जाएगा बढ़िया एकदम। तो आप लोग चाहते हैं बढ़िया घर बने, तो इसलिए फिर आपको सतत कीर्तन करना चाहिए, है ना। भजन वही कर सकता है जिसकी वृत्ति जो कैसी है, सरल है। श्रील प्रभुपाद इसी श्लोक के तात्पर्य में बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति की वृत्ति कैसी है, सरल है। देखिए श्लोक में भगवान अंत में बताया है, जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, ये भक्ति न केवल सरल है, ये भक्ति बड़ी सरल है और उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति सरल है। तो एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, आप सब लोग तो बहुत दिनों से सालों से आ रहे हैं, बहुत समझदार और सीनियर भक्त हैं, आपसे प्रश्न है सरल का क्या अर्थ है? कहते हैं ना सरल हो जाओ भक्ति में, कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बस आसानी से जो हो जाए सरल। तो सरल का मतलब बता सकते हैं क्या है? सरल, प्रभु जी वीक हो गए प्रभु जी हमारे, ग्लूकोन डी पिलाओ, सरल का शब्द बताओ, सहज हो जो, और कोई माता, सरल शब्द का अर्थ जो नरम हो, बहुत सुंदर। और कोई माता? हाँ बताएं माता जी। आचार्य के द्वारा बताए गए रास्ते पे चलता हो वो सरल व्यक्ति, और आप बताएं माता जी? जो सीधा साधा हो। बहुत सुंदर, सब जानते हैं सरल का मतलब, लेकिन असली सरल का शब्द क्या है मैं आपको आज बताता हूं। बहुत सुंदर, सरल का अर्थ है स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण का वास है वो व्यक्ति सरल है। मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है तो सीताराम लक्ष्मण की, वो व्यक्ति बोले कि मैं जी बहुत विनम्र हूं प्रभु जी, लेकिन मैं ना ध्यान करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, वो सरल नहीं है, वो डुप्लीकेट आदमी है। क्योंकि वो समझा ही नहीं कि भक्ति किसकी करनी है। इकला प्रभु कृष्ण आर सब भ्रत, तो जिसके हृदय सिया राम बसे उन और का नाम भजा ना भजा। सीता राम श्री कृष्ण राधा इनके जो भजन करता है वो व्यक्ति असल सरल व्यक्ति है। तो सरल का अर्थ हुआ सीता राम लखन जिसके हृदय में वास करते हैं, है ना। तो आप अगर सरल बनना चाहते हैं तो राधा गोविंद को, राधा कृष्ण को, सीताराम लक्ष्मण को अपने हृदय का बीज बनाकर आरोपित कर लीजिए और फिर देखिए कीर्तन में कितना आनंद आएगा, है ना। वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली सरल है, जो भक्त है वो सरल है। वरना लोग लगे पड़े सरल बनने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है सरल बनना, हमेशा कॉम्प्लिकेशन रहता है, लालच घेर के रखता है, काम क्रोध हमें घेर के रखते हैं। तो ऐसे एक भक्त है, उनका नाम बाद में तो रामा भक्त हुआ, पहले उनका नाम जो रामा भक्त नहीं था। तो वो जो थे वो बहुत भोजन के होशियार थे, इतना भोजन खाते थे कि एक एक बार में जो एक एक किलो चावल, अकेला व्यक्ति एक किलो चावल एक बार में खाता था, तीन बार में तीन किलो चावल खाएगा दिन में ऐसा। तो परिवार के लोग भी बोले काम काज कुछ करता नहीं, निठल्ला और तीन किलो चावल। तो भाइयों ने क्या किया, उसको घर से निकाल दिया। अब निकालने के बाद क्या हुआ कि बोले कि एक आश्रम है छावला में सचिपति प्रभु का, वहां चले जाओ और वहां जाके ना फ्री में आपको प्रसाद मिलता है, भजन भी बंदे को मिलता है, तीन किलो मांगो तीन किलो मिलेगा, चार किलो। तो ऐसी प्रकार से वो एक आश्रम में उनके भाई लेकर उनको छोड़ आए। तो वहां के जो गुरुजी थे बहुत सुंदर भक्त थे, सीताराम की सेवा करते थे, सीताराम लखन हनुमान की। तो क्या हुआ कि जब उनको छोड़ के चले गए तो वो बहुत सेवा करता, उन्होंने कहा देखो तुम्हें तीन किलो चावल क्या चार किलो भी दे देंगे, पर इसका एक वो लगेगा, क्या पैसा लगता है ना किसी भी चीज का, क्या पैसा है, सेवा करनी पड़ेगी। बोले आप सुबह से लेकर रात तक सेवा कराओ लेकिन बस तीन किलो चावल दे दो, मेरा पेट भर जाए, वो बस मैं तो फिर सारा दिन सेवा करूँ। ठीक है, बड़ी अच्छी मंदिर की सेवा करता सुबह से शाम, सुबह से शाम। चार 14-15 दिन बाद एकादशी आ गई, जैसे कल आने वाली है। तो एकादशी आई तो बोला कि महाराज, बोले देखो आज दसवीं है, तैयारी कर लो, कल चावल नहीं मिलेगा, क्योंकि एकादशी को चावल नहीं खाते। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो फिर मर जाऊंगा, एक भक्त का अपराध हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो गुरुजी बोले कि नहीं ठीक है, तुम मरोगे नहीं, तुम जो है फल खा लेना, तुम्हारे लिए फल खाना है। वो फल से तो चलेगा ही नहीं, 50 किलो फल डालोगे तो खुदनी में को, तो तीन किलो चावल ही चावल चाहिए, इसके बिना तो मर ही जाता हूँ। कह रहे तो तुमने बताया नहीं था ज्वाइन करते वक्त मंदिर को कि तुम्हें एकादशी के दिन भी चावल चाहिए। नहीं चावल तो चाहिए। कह रहे अच्छा ठीक है, काम करो, गुरु जी का प्रेम होता है ना करुणा अवतार, जैसे महा हमारे प्रभुपाद है शराब पीने वालों को भी बोलते हैं जप करो, एक दिन शराब छूट जाएगी और जप करने लगे। और आज प्रभुपाद ने पूरे विश्व को बदल दिया, जो शराब पीते थे सिगरेट आज वो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, ऐसे ही सर उड़वा के बाल उड़वा के और घूमते हैं जप की माला लेके, है ना। तो ये श्रद्धा होती है, करुणा होती है गुरु की, तो गुरु की करुणा थी। उन्होंने कहा ठीक है एक काम करो, जंगल में चले जाओ किसी को बिना बताए, और वहां जाके दूर आज रात दसवीं को ही ले जाओ तुम अपने तीन किलो चावल, और वहां जाके बनाना भी खुद, भोग लगा के खाना, बनाना और भोग लगाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, और जब बनाओ तो लगातार कीर्तन करते रहना। क्या कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत सुंदर वो कीर्तन किए और लकड़ी अरेंज किए और लकड़ी वकड़ी लेकर और खूब प्रसाद बनाए बढ़िया से। अब बोले गुरुजी ने बोला भोग लगा के खाना, भोग लगाना जरूरी है। तो उन्होंने सीताराम लक्ष्मण उनके आराध्य देव थे, सीताराम लक्ष्मण को याद किया और भोग लगाया। अब भोग लगा के आंखें बंद करके खा लो मेरे प्रभु, खा लो मेरे प्रभु, खा लो मेरे प्रभु, शब्द श्लोक आते नहीं थे, पेटू आदमी थे, भक्त थे लेकिन गुरु की बात माने। अब खा लो मेरे प्रभु, आंख खोली तो वैसे के वैसे चावल। अरे प्रभु जी खा लो, आपका तो कुछ नहीं होगा, बेचारा जीव मारा जाएगा, आप तो भगवान हो, आपको तो जगन्नाथपुरी में इतना भोग लगता है, मैं मर जाऊंगा। तो है ना फिर आंख बंद किए, फिर बोले खा लो प्रभु खा लो प्रभु, बहुत देर तक प्रार्थना करते रहे। वो 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, कोई खाया वो तो तड़पने लगा, लेट गया, लेट के भी बोल रहा प्रभु जी मर गए, उठा लो उठा लो। तो भगवान ने कहा कि चलो भक्त बन जाएगा, इसने इतना नाम पुकारा, इतना नाम जप किया है काशी के दिन, तो चलो इसको आ जाते हैं। तो भगवान राम प्रकट हो गए। भगवान राम ने कहा क्या खिलाना चाहते हो? बोले ये आपके लिए चावल है। अरे भगवान राम वाह वाह बड़े स्वादिष्ट है। भगवान ने खाए, भगवान के लिए काशी थोड़ी होती है। भगवान ने खाए खूब, भगवान ने भोग खाया तो हाथ पकड़ लिया, कह रहा है इतनी देर में तो आए हो, आके भी खुद लग गए खाने के लिए, भक्त भूखा बैठा है। ये तो सारे खा जाएंगे। अरे आप मत कहो भगवान, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो। तो भगवान बोले ठीक है मैं सारा नहीं खाऊंगा, तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा सा छोड़ दिया महाप्रसाद, खाया भूखा रह गया बेचारा, रोया गुरु जी के पास आके, गुरु जी अपना चल नहीं पाया 3 किलो। बोले काशी का दिन 3 किलो चावल फिर भी नहीं चल पाया। बोले क्यों? बोले अगली बार थोड़ा ज्यादा देना, वहां पर हो नहीं पाया मेरे को। गुरु जी बोले ठीक है तुम कोई अगली बार 4 किलो ले जाना, ठीक है चिंता मत करो सेवा करो। फिर 15 दिन सेवा करी, काशी आई 4 किलो 10वीं को लेकर जंगल चला गया। फिर याद किया सीताराम खा लो, अब तो भगवान फ्रेंड हो चुके, दोस्त बन गए। तो भगवान आ गए, सीता और राम दोनों आ गए। तो जो 4 किलो चावल था उसमें से 2-2 किलो दोनों ने बांट लिया। सीताराम ने अब दोनों खा रहे हैं, एक खिला रहा है, कह रहा है पिछली बार एक ही नहीं कर पाया था पूरा, अब तो दोनों जोड़े में आ गए, अब तो मैं भूखा मर जाऊंगा, सीता मैया आप ही कृपा करो। तो मैया ने थोड़ा सा उठा के चावल दिया, फिर खाया गुरु जी के आगे। गुरु जी बोले आपकी काशी ठीक गई? ओए गुरु जी इस बार भी भूखा रह गया। क्यों? बोले पंगत लग गई थी। तो अच्छा, फिर ऐसे प्रकार से होता रहा होता रहा। एक समय ऐसा आ गया कि अब गुरुजी बोले भैया तुम्हारी रिक्वायरमेंट तो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हर एकादशी पे जब वो भगवान को पुकारता तो एक बार सीताराम आए, फिर सीताराम लखन आए, फिर सीताराम हनुमान लखन आए, फिर शत्रुघ्न भरत आए, उसके बाद तो फिर वानर सेना आ गए, सुग्रीव सारे आ गए। अरे वहां पर तो पूरी पंगत लग गई, खाए जा रहे सब, और ये बेचारा मांग मांग के परेशान। तो बड़ी दुखक स्थिति हो गई। तो देखो इसने ऐलान कर दिया इन काशी पे, जब ज्यादा भीड़ देखी बोला देखो मेरे बस का नहीं कि मैं इतने इतने लोगों का बनाऊं, मैंने कभी घर में नहीं बनाया, कभी वो मंदिर में नहीं बनाया, बना बनाया मिलता मैं खाता हूं और झाड़ू की सेवा करता हूं। अब अगली बार से ये करो कि लखन जी आप तो पानी भरो, और सीता भैया आप कुकिंग करो, और रामचंद्र जी आप निरीक्षण में, क्योंकि आप तो सर्वश्रेष्ठ भगवान है, आप निरीक्षण करो, और वानर सेना क्या करेंगे भक्षा मांग के चावल लाओ और कुछ बनाओ, मुझे भी खिलाओ आप भी खाओ। ऐसा होने लगा। अब ये भक्त का प्रेम है कि भगवान ऐसे सरल जीव जिसके हृदय में सीताराम लक्ष्मण है आते हैं भगवान उसके लिए। और होने लगा। अब तो गुरु जी एक दिन अपना आश्रम बंद करके जा रहे थे, तो सारे जितने भी भक्त थे सब बोले गुरु जी किसको जिम्मेदारी देंगे, किसको जिम्मेदारी देंगे। तो गुरु ने किसको जिम्मेदारी दी? रामा भगत को। रामा भगत को जिम्मेदारी दे के और बोले कि तुम देखभाल करना सीताराम लक्ष्मण के विग्रह की, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पे 1 साल के लिए। अब ये क्या करते हैं कि ये ना मंदिर को बंद कर लेते हैं और दर्शन के लिए बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अंदर मूर्ति में से भगवान निकल रहे हैं और वहीं टेंपल हॉल के अंदर ही प्रसाद सेवन चल रहा है, सीता मैया डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, लखन जी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ तो रूप ही अलग है। लोग देखेंगे तो लोग सोचेंगे नौटंकी से पकड़ लाए हैं 4-5 मुकुट लगा के, और है ना आपस में जो है ना यहाँ पे मंदिर के अंदर कुछ लीला चल रही है, कुछ चोरी चकारी चल रही है, भक्तों को विश्वास नहीं है ना। तो इस तरह से होने लगा और मंदिर बंद हो गया। वो मंदिर बंद रहता और खूब सेवा चलती। 1 साल बाद जब गुरु जी लौट के आए तो सारे आसपास के मोहल्ले के लोग बोले भैया आपके प्रभु जी तो हो गए पागल। क्यों? बोले मंदिर खोला ही नहीं, दर्शन ही नहीं करने देता, अंदर पता नहीं क्या चलता रहता। हमने झांक के देखा तो कुछ नौटंकी के लोग अंदर, कोई सीता बनाए, कोई राम बनाए, कोई लक्ष्मण बनाए, और वो क्या करते हैं सब आपस में खाना बनाते हैं और खाते हैं, और ये भी उनके साथ में मिला हुआ है। कह रहे अच्छा मुझे देखने दो। तो गुरुजी ने भी बताया नहीं कि मैं आ गया हूं, और उन्होंने झांक कर देखा। झांक कर देखा तो क्या देखा कि सीताराम लक्ष्मण हनुमान पूरी सेना उनकी बैठी है और प्रसाद सेवन चल रहा है। गुरुजी के आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई, क्योंकि गुरुजी तो साक्षात गुरु थे ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित करा था उन्होंने, और देखा कि मेरा जो शिष्य है मेरे बताए रास्ते पे चल रहा है और ये मुझसे आगे निकल गया है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ सीताराम की मूर्ति की सेवा करी, इसने साक्षात सीताराम लक्ष्मण को अपने सामने प्रकट किया है। इस तरह का भक्ति है। देखिए श्रील प्रभुपाद 108 मंदिर की स्थापना किए, उनके गुरु महाराज 64 मंदिर की स्थापना किए, और जो है हमारे जो आजकल के वर्तमान आचार्य उन्होंने 700 मंदिर की स्थापना करी विश्व में। तो आप देखिए शिष्य गुरु से आगे निकलता जा रहा है। ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति सरल हो, सरल मतलब जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण का विग्रह स्थापित हो, राधा कृष्ण का विग्रह स्थापित हो, गौरांग नित्यानंद का विग्रह स्थापित हो। अन्यथा बहुत मुश्किल है अपने जीवन में सरल बनना, है ना। सरल बनने का नाटक कर सकते हैं, सरल नहीं होंगे जब तक भगवान नहीं आएंगे। और भगवान को लाने का कलयुग में सबसे आसान तरीका क्या है,